आप सुन रहे हैं प्रतिनिधि कहानियां बाय इस्मत चुगताई, मेरी यानी सुरभि की आवाज में। और आज की कहानी है बच्चू फूफी। जब पहली बार मैंने उन्हें देखा तो वह रहमान भाई के पहले मंजिले की खिड़की में बैठी लंबी लंबी गालियां और कोसने दे रही थी। यह खिड़की हमारे सहन में खुलती थी और कानूनन उसे बंद रखा जाता था क्योंकि पर्दे वाली बीवियों का सामना होने का डर था। रहमान भाई रंडियों के जमादार थे। कोई शादी ब्याह खतना बिस्मिल्लाह की रस्म होती, रहमान भाई औने पौने उन रंडियों को बुला देते और गरीब के घर में भी वहीद जान, मुश्ती बाई और अनवरी कहरवा नाच जाती। मगर मोहल्ले टोले की लड़कियां बालियां उनके नजर में अपनी सगी माँ बहने थी। उनके छोटे बाई बुंदू और गेंदा आए दिन तांग झांक के सिलसिले में सर फुटव्वल किया करते थे। वैसे रहमान भाई मोहल्ले की नजरों में कोई अच्छी हैसियत नहीं रखते थे। उन्होंने अपनी बीवी की जिंदगी में ही अपनी साली से जोड़ तोड़ कर लिया था। उस यतीम साली का सिवाय उस बहन के और कोई मरा जीता ना था। बहन के हाल पड़ी थी, उसके बच्चे पालती थी, बस दूध पिलाने की कसर थी, बाकी सारा गू मूत वही करती थी। और फिर किसी नक्चड़ी ने उसे बहन के बच्चे के मुंह में एक दिन छाती देते देख लिया। भांडा फूट गया और पता चला कि बच्चों में आधे बिल्कुल खाला की सूरत पर है। घर में रहमान की दुल्हन चाहे बहन की दुर्गत बनाती हो पर कभी पंचों में इकरार न किया। यही कहा करती थी, जो कुवारी को कहेगा उसके दीदे घुटनों में आगे आएंगे। हाँ, वर की तलाश में हरदम सूखा करती थी, पर उस कीड़े भरे कबाब को कहाँ जुड़ता। एक आंख में ये बड़ी कौड़ी सी फुल्ली थी, पैर भी एक जरा छोटा था, कूल्हा दबा कर चलती थी। सारे मोहल्ले से एक अजीब तरह का बॉयकॉट हो चुका था। लोग रहमान भाई से काम पड़ता तो धौंस जमा कर कह देते। मोहल्ले में रहने की इजाजत दे रखी थी, यही क्या कम इनायत थी। रहमान भाई उसी को अपनी इज्जत अफजाई समझते थे। यही वजह थी कि वह हमेशा रहमान भाई की खिड़की में बैठकर तूल तबील गालियां दिया करती थी, क्योंकि बाकी मोहल्ले के लोग अब्बा से दबते थे। मजिस्ट्रेट से कौन बैर मोल ले। उस दिन पहली दफा मुझे मालूम हुआ कि हमारी इकलौती सगी फूफी बादशाही खानम है और ये लंबी लंबी गालियां हमारे खानदान को दी जा रही हैं। अम्मा का चेहरा फक था और वह अंदर कमरे में सहमी बैठी थी। वैसे बच्चू फूफी की आवाज उन पर बिजली बनकर टूट पड़ेगी। छठे छमाहे इसी तरह बादशाही खानम रहमान भाई की खिड़की में बैठकर हुंकारती। अब्बा मियां उनसे जरा सी आड़ लेकर मजे से आराम कुर्सी पर दराज अखबार पढ़ते रहते और मोतिया महल पर किसी लड़के बाले के जरिए कोई ऐसी बात जवाब में कह देते कि फूफी बादशाही फरिश्ता बयां छोड़ने लगती। हम लोग सब खेल कूद पढ़ना लिखना छोड़कर सहन में गुच्छा बनाकर खड़े हो जाते और मुड़ मुड़ कर अपनी प्यारी फूफी के कोसने सुना करते। जिस खिड़की में वह बैठी थी उनके तूल तावील जिस्म से लबालब भरी हुई थी। अब्बा मियां से इतनी हमशक्ल थी जैसे वही मूछें उतार कर दुपट्टा ओढ़ कर बैठ गए हों। और बावजूद कोसने और गालियां सुनने के हम लोग बड़े इत्मीनान से उन्हें तका करते थे। 5.5 फुट का कद, 4 अंगुल चौड़ी कलाई, शेर कासा कल्ला, सफेद बागुल बाल, बड़ा सा दहाना, बड़े बड़े दांत, भारी सी ठोड़ी और आवाज तो माशा अल्लाह मियां से एक सुर नीची ही होगी। फूफी बादशाही हमेशा सफेद कपड़े पहना करती थी। जिस दिन फूफा मसूद अली ने मेहतरानी के संग कुलेलें करनी शुरू की, फूफी ने बट्टे से सारी चूड़ियां छना छन तोड़ डाली, रंगा दुपट्टा उतार दिया और उस दिन से वह उन्हें मरहूम या मरने वाला कहा करती थी। ये सानिहा खासी जवानी में हुआ था और वह तब से रंडापा झेल रही थी। हमारे फूफा हमारी अम्मा के चचा भी थे। वैसे तो ना जाने क्या घपला था, मेरे अब्बा मेरी अम्मा के चचा लगते थे और शादी से पहले जब वह छोटी सी थी तो मेरे अब्बा को देखकर उनका पेशाब निकल जाता था। और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि उनकी मंगनी इसी भयानक देव से होने वाली है तो उन्होंने अपनी दादी यानी अब्बा की फूफी की पिटारी से अफीम चुराकर खा ली थी। अफीम ज्यादा नहीं थी और वह कुछ दिन लोटपोट कर अच्छी हो गई। उन दिनों अब्बा अलीगढ़ कॉलेज में पढ़ते थे। उनकी बीमारी की खबर सुनकर इम्तहान छोड़कर भागे। बड़ी मुश्किल से हमारे नाना, जो अब्बा के फूफीजाद भाई भी थे और बुजुर्ग दोस्त भी, उन्होंने समझा बुझा कर वापस इम्तिहान देने भेजा था। जितनी देर वह रहे, भूखे प्यासे टहलते रहे। अधखुली आँखों से मेरी अम्मा ने उनका चौड़ा चकला साया पर्दे के पीछे बेकरारी से तड़पते देखा। उमराव भाई, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? देव की आवाज लरज रही थी। नाना मियाँ खूब हंसे। नहीं बिरादर, खातिर जमा रखो, कुछ ना होगा। उस वक्त मेरी मुन्नी सी माँ एकदम औरत बन गई थी। उनके दिल में एकदम देवजाद इंसान का खौफ निकल गया था। जब ही तो मेरी फूफी बादशाही कहती थी, मेरी अम्मा जादूगरनी है और उनका तो मेरे भाई से शादी के पहले ताल्लुक होकर पेट गिरा था। मेरी अम्मा अपने जवान बच्चों के सामने जब यह गालियां सुनती तो ऐसे लबोर लबोर कर रोती कि हमें उनकी मार फरामोश हो जाती और प्यार आने लगता। मगर वे गालियां सुनकर अब्बा की गंभीर आंखों में परियां नाचने लगती। वह बड़े प्यार से नन्हे भाई के जरिए कहलवाते, क्यों फूफी, आज क्या खाया है? तेरी मैया का कलेजा। इस बेतुके जवाब से फूफी जलकर मरिंदा हो जाती। अब्बा फिर जवाब दिलवाते, अरे फूफी, जब ही मुंह में बवासीर हो गई है, जुल्लाब लो जुल्लाब। वह मेरे नौजवान भाई की मचमचाती लाश पर कौवों चीलों को दावत देने लगती। उनके दुल्हन को, जो न जाने बेचारी इस वक्त कहाँ बैठी अपने ख्याली दूल्हा के इश्क में लरज रही होगी, रंडापे की दुआएं देती और मेरी अम्मा कानों में उंगलियां देकर बड़बड़ाती, जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। अब्बा फिर उकसाते और नन्हे भाई पूछते, फूफी बादशाही मेहतरानी फूफी का मिजाज तो अच्छा है और हमें डर लगता कि कहीं फूफी खिड़की में से फान न पड़े। अरे जा सपोलिए, मेरे मुंह ना लग, नहीं तो जूती से मुंह मसल दूंगी। ये बुढ़ा अंदर बैठा क्या लौंडा को सिखा रहा है? मुगल बच्चा है तो सामने आकर बात करे। रहमान भाई, ए रहमान भाई, इस बौरानी कुतिया को सखियां क्यों नहीं खिलाते? अब्बा के सिखाने पर नन्हे भाई डरते हुए बोलते। हालांकि उन्हें डरने की कोई जरूरत तो ना थी, क्योंकि सब जानते थे कि आवाज उनकी है मगर अल्फाज अब्बा मियाँ के हैं। लिहाजा गुनाह नन्हे भाई की जान पर नहीं, मगर फिर भी बिल्कुल अब्बा की शक्ल की फूफी की शान में कुछ कहते हुए उन्हें पसीने आ जाते थे। कितना जमीनों आसमान का फर्क था हमारे ददिहाल और ननिहाल वालों में। ननिहाल हकीमों की गली में थी और ददिहाल गाड़ी बानों कटहरे में। ननिहाल वाले सलीम चिश्ती के खानदान से थे, जिन्हें मुगल बादशाह ने मुर्शीद का मर्तबा देकर निजात का रास्ता पहचाना। हिंदुस्तान में बसे उसे अरसा गुजर चुका था, रंगत संवला चुकी थी, नकोश नरम पड़ चुके थे, मिजाज ठंडे हो गए थे। ददिहाल वाले बाहर से सबसे आखिरी खेप में आने वालों में से थे। जहनी तौर पर अभी तक घोड़ों पर सवार मंजिलें मार रहे थे। खून में लावा दहक रहा था। खड़े खड़े तलवार जैसे नकोश, लाल फिरंगियों जैसे मुंह, गोरिल्लों जैसी कद्दो कामत, शेरों जैसी गरजदार आवाजें, शहतीर जैसे हाथ पांव और ननिहाल वाले नाजुक हाथ पैरों वाले शायराना तबीयत के, धीमी आवाज में बोलने चालने के आदि ज्यादातर हकीम, आलिम और मौलवी थे। अभी मोहल्ले का नाम हकीमों गली पड़ गया था। कुछ कारोबार में भी हिस्सा लेने लगे थे। शालबाज, जरदोस और अत्तार वगैरह बन चुके थे। हालांकि मेरी ददिहाल वाले ऐसे लोगों को कुजड़े कसाई कहा करते थे, क्योंकि वे खुद ज्यादातर फौज में थे। वैसे मार धाड़ का शौक अभी तक नहीं हुआ था। कुश्ती, पहलवानी, तैराकी में नाम पैदा करना, पंजा लड़ाना, तलवार और पट्टे के हाथ दिखाना और चौसर पच्चीसी को, जो मेरी ननिहाल के मरगुबतरीन खेल थे, हिंजड़ों के खेल समझते थे। कहते हैं जब आतिश फिशा पहाड़ फटता है तो लावा वादी की गोद में उतर जाता है। शायद यही वजह थी कि मेरे ददियाल वाले ननिहाल वालों की तरफ खुद ब खुद खिंच कर आ गए। वह मेल कब और किसने शुरू किया सब शजरे में लिखा है, मगर मुझे ठीक से याद नहीं। मेरे दादा हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए थे। दादियां भी उसी खानदान से ताल्लुक रखती थी, मगर एक छोटी सी बहन बिन ब्याही थी। न जाने क्यों कर वह शेखों में ब्याह दी गई। शायद मेरी अम्मा के दाद ने मेरे दाद पर कोई जादू कर दिया था कि उन्होंने अपनी बहन बकौल फूफी बादशाही कुंजड़ो कसाईयों में दे दी। अपने मरहूम शौहर को गालियां देते वक्त वह हमेशा अपने बाप को कब्र में चैन न मिलने की बद्दुआएं दिया करती, जिन्होंने चुगताई खानदान की मिट्टी पलीद कर दी। मेरी फूफी के 3 भाई थे, मेरे ताया, मेरे अब्बा मियां और मेरे चचा। 2 उनमें से बड़े थे और चचा सबसे छोटे थे। 3 भाइयों की एक लाडली बहन हमेशा की नखरीली और तुनक मिजाज थी। वह हमेशा तीनों पर रौब जमाती और लाड करवाती, बिल्कुल लौंडों की तरह पली। शाहसवारी, तीरंदाजी और तलवार चलाने की भी खास मशक थी। वैसे तो फैल फाल कर ढेर मालूम होती थी, मगर पहलवानों की तरह सीना तान कर चलती थी। सीना था भी 4 औरतों जितना। अब्बा मजाक में अम्मा को छेड़ा करते, बेगम बादशाही से कुश्ती लड़ोगी? ओए तौबा मेरी, आलिम फाजिल बाप की बेटी मेरी अम्मा कान पर हाथ धर कर कहती। मगर वह नन्हे भाई से फौरन फूफी को चैलेंज भिजवाते, फूफी हमारी अम्मा से कुश्ती लड़ोगी? हाँ हाँ, बुला अपनी अम्मा को, आ जाइए काम ठोक कर। अरे उल्लू ना बना दूं तो मिर्जा करीम बेग की औलाद नहीं, बाफ का नुतफा है तो बुला, बुला मुल्ला जादी को। और मेरी अम्मा अपनी लखनऊ का बड़े पायचों का पायजामा समेट कर कोने में दुबक जाती। फूफी बादशाही दादा मियां गवार थे ना, बड़े नाना जान उन्हें आमद नामा पढ़ाया करते थे। हमारे परनाना के दादा जान ने कभी दादा मियां को कुछ पढ़ा दिया होगा। अब्बा मियां छेड़ने को बात तोड़ मोड़ कर कहलवाते, अरे वो इस्तेजे का ढेला क्या मेरे बाबा को पढ़ाता, मुजावर कहीं का, हमारे टुकड़ों पर पलता था। यह सलीम चिश्ती और अकबर बादशाह के रिश्ते से हिसाब लगाया जाता। हम लोग यानी चुगताई अकबर बादशाह के खानदान से थे, जिन्होंने मेरी ननिहाल के सलीम चिश्ती को पीर व मुर्शीद कहा था। मगर फूफी कहती, खाक पीर व मुर्शीद के दुम, मुजावर थे मुजावर। 3 भाई थे, मगर तीनों से लड़ाई हो चुकी थी और वह गुस्सा होती तो तीनों की धज्जियां बिखेर देती। बड़े भाई बड़े अल्लाह वाले थे, उन्हें फकीर और भिकमंगा कहती। हमारे अब्बा गवर्नमेंट सर्विस में थे, उन्हें गद्दार और अंग्रेजों का गुलाम कहती, क्योंकि मुगल शाही अंग्रेजों ने खत्म कर डाली। वरना आज मरहूम पतली दाल के खाने वाले जुलाहे यानी मेरे फूफा के बजाय वह लाल किले में जेबो निसा की तरह अर्क गुलाब में गुसल फरमाकर किसी मुल्क के शहंशाह की मलका बनी बैठी होती। तीसरे यानी चचा बड़े 10 नंबर के बादशाहों में से थे और सिपाही डरता डरता मजिस्ट्रेट भाई के घर उनकी हाजिरी लेने आया करता था। उन्होंने कई कत्ल किए थे, डाके डाले थे, शराब और रंडीबाजी में अपनी मिसाल आप थे। वह उन्हें डाकू कहा करती थी, जो उनके कैरेक्टर को देखते हुए कतई फुसफुसा लफ्ज था। मगर जब वह अपने मरहूम शौहर से गुस्सा होती तो कहा करती, मुहजले निगोड़ी नहटी नहीं हूँ, अगर छोटा सुन ले तो पल भर में अतड़िया निकाल के हाथ में थमा दे, डाकू है डाकू, उससे बच गया तो मंझला मजिस्ट्रेट तुझे जेल में सड़ा देगा, सारी उम्र चक्कियां पिसवाएगा, और उससे भी बच गया तो बड़ा जो अल्लाह वाला है तेरी आकबत खाक में मिला देगा। देख मुगल बच्ची हूँ, तेरी अम्मी की तरह शेखानी फतानी नहीं। मगर मेरे फूफा अच्छी तरह जानते थे कि तीनों भाई उन्हीं पर रहम खाते हैं और वे बैठे मुस्कुराते रहते हैं। वही मीठी मीठी जहरीली मुस्कुराहट जिसके जरिए मेरे ननिहाल वाले ददिहाल वालों को बरसों से जला रहे थे। हर ईद बकरीद को मेरे अब्बा मियां बेटों को लेकर ईदगाह से सीधे फूफी अम्मा के यहाँ कोसने और गालियां सुनने जाया करते। वह फौरन पर्दा कर लेती और कोठरी में से मेरी जादूगरनी माँ और डाकू मामू को कोसने लगती। नौकर को बुलाकर सेवैयां भिजवाती, मगर कहती, पड़ोसन ने भेजी है, इनमें जहर तो नहीं मिला है, अब्बा छेड़ने को कहते, और फिर सारी ननिहाल के चीथड़े बिखर जाते। सेवैयां खाकर अब्बा ईदी देते, जो वह फौरन जमीन पर फेंक देती कि अपने सालों को दो, वही तुम्हारी रोटियों पर पले हैं, और अब्बा चुपचाप चले आते। वह जानते थे कि फूफी बादशाही वह रुपये घंटों आँखों से लगा कर रोती रहेंगी। भतीजों को वह आड़ में बुलाकर ईदी देती, हरामजादो अगर अम्मा और अब्बा को बताया तो बोटियों को काट कर कुत्तों को खिला दूंगी। अब्बा अम्मा को मालूम था कि लड़कों को कितनी ईदी मिली। अगर किसी ईद पर किसी वजह से अब्बा मियां ना जा पाते तो पैगाम पर पैगाम आते, नुसरत खानम बेवा हो गई, चलो अच्छा हुआ, मेरा कलेजा ठंडा हुआ। बुरे बुरे पैगाम शाम तक आते ही रहते और फिर वह खुद रहमान भाई के कोठे पर से गालियां बरसाने आ जाती। एक दिन ईद की सेवैयां खाते खाते कुछ गर्मी से जी मितलाने लगा। अब्बा मियां को उल्टी हो गई। लो बादशाही खानम, कहा सुना माफ करना, हम तो चले। बस अब्बा मियां ने कराह कर आवाज बनाई और फूफी लश्तम पश्तम पर्दा फेंक छाती कूटती निकली। अब्बा को शरारत से हंसते देख उल्टे पांव कोसती लौट गई। तुम आ गई बादशाही तो मलकूत मौत भी घबराकर भाग गए, वरना हम तो आज खत्म ही हो जाते, अब्बा ने कहा। ना पूछिए फूफी ने कितने वजनी कोसने दिए। उन्हें खतरे से बाहर देखकर बोली, अल्लाह ने चाहा बिजली गिरेगी, नाली में गिरकर दम तोड़ोगे, कोई मैयत को कांधा देने वाला ना बचेगा। अब्बा चढ़ाने को उन्हें 2 रुपए भिजवा देते। भाई हमारी खानदानी डोमनियां गाली दे दें तो उन्हें बेल तो मिलनी ही चाहिए, और वे बौखलाहट में कह जाती, बेल दे अपनी अम्मा बहनियां को, और फिर अपना मुंह पीटने लगती। खुद ही कहती, ए बादशाही बंदी, तेरे मुंह को कालिख लगे, अपनी मैयत आप पीट रही है। फूफी को असल में भाई से ही बैर था, बस उनके नाम पर आग लग जाती। वैसे कहीं अब्बा के बगैर अम्मा नजर आ जाती तो गले लगाकर प्यार करती, प्यार से नच्छू नच्छू कर कहती, बच्चे तो अच्छे हैं। वह बिल्कुल भूल जाती थी कि ये बच्चे उसी बज्जात भाई के हैं जिसे वह अजल से अबद तक कोसती रहेंगी। अम्मा उनकी भतीजी भी तो थी, भाई किस कदर घपला था। मेरी ददिहाल ननिहाल में एक रिश्ते से मैं अपनी अम्मा की बहन भी लगती थी। इस तरह मेरे अब्बा मेरे दूल्हा भाई भी होते थे। मेरे ददिहाल को ननिहाल वालों ने क्या क्या गम ना दिए। गजब तो तब हुआ जब मेरी फूफी की बेटी मुसर्रत खानम जफर मामू को दिल दे बैठी। हुआ यह कि मेरी अम्मा की दादी यानी अब्बा की फूफी जब लबे दम हुई तो दोनों तरफ के लोग तीमारदारी को पहुंचे। मेरे मामू भी अपनी दादी को देखने गए और मुसर्रत खानम भी अपनी अम्मा के साथ उनकी फूफी को देखने आई। बादशाही फूफी को कुछ डर खौफ तो था नहीं, वह जानती थी कि मेरे ननिहाल वालों की तरफ से उन्होंने अपनी औलाद के दिल में इत्मीनान बख्श हद तक नफरत भर दी है। और 15 बरस की मुसर्रत खानम का अभी तक तन ही क्या था, अम्मा के कूल्हे से लग कर सोती थी, दूध पीती ही तो उन्हें लगती थी। फिर जब मेरे मामू ने अपनी करंजी शरबत भरी आंखों से मुसर्रत जहां के लचकदार सरापे को देखा तो वही के वही जम कर रह गए। दिन भर बड़े बूढ़े तीमारदारी करके थक हार कर सो जाते तो ये फरमा बरदार बच्चे सिरहाने बैठे मरीज पर कम एक दूसरे पर ज्यादा निगाह रखते। जब मुसर्रत जहां बर्फ में तर कपड़ा बड़ी बी के माथे पर बदलने को हाथ बढ़ाती तो जफर मामू का हाथ वहां पहले से मौजूद होता। दूसरे दिन बड़ी बी ने पट से आंखें खोल दी, लरस्ती कांपते तकिए के सहारे उठ बैठी। उठते ही सारे खानदान के जिम्मेदार लोगों को तलब किया। जब सब जमा हो गए तो हुक्म हुआ, काजी को बुलवाओ। लोग परेशान कि बुढ़िया काजी को क्यों बुला रही है, आखिर आखिरी वक्त सुहाग रचाएगी, किसको दम मारने की हिम्मत थी। दोनों का निकाह पढ़ाओ। लोग चकराए, किन दोनों का, मगर उधर मुसर्रत जहां पट से बेहोश होकर गिर गई और जफर मामू बौखला कर बाहर चले। चोर पकड़े गए, निकाह हो गया। बादशाही फूफी सन्नाटे में रह गई। हालांकि कोई खतरनाक बात ना हुई थी, दोनों ने सिर्फ हाथ पकड़े थे, मगर बड़ी बी के लिए बस यही हद थी। फिर जब बादशाही फूफी को दौरा पड़ा, यह तो बस घोड़े और तलवार के बगैर उन्होंने कुश्तों के पुश्त लगा दिए, खड़े खड़े बेटी दामाद को निकाल दिया। मजबूरन अब्बा मियां दूल्हा दुल्हन को अपने घर ले आए। अम्मा तो चांद सी भाभी को देखकर निहाल हो गईं। बड़ी धूमधाम से वलीमा किया। बादशाही फूफी ने उस दिन से फूफी का मुंह नहीं देखा। भाई से पर्दा कर लिया, मियां से पहले ही नाचती थी, दुनिया से मुंह फेर लिया, और एक जहर था कि उनके दिलो दिमाग पर चढ़ता ही गया। जिंदगी सांप के फन की तरह डसने लगी। बुढ़िया ने पोते के लिए मेरी बच्ची को फंसाने के लिए मक्कर गांठा था, वह बराबर ही कहे जाती, क्योंकि वाकई वह उसके बाद 20 साल तक और जी। कौन जाने, ठीक ही कहती हूँ फूफी, मरते दम तक बहन भाई में मेल ना हुआ। जब अब्बा मियां पर पालिच का चौथा हमला हुआ और बिल्कुल ही वक्त आ गया तो उन्होंने फूफी बादशाही को कहला भेजा, बादशाही खानम हमारा आखिरी वक्त है, दिल का अरमान पूरा करना हो तो आ जाओ। न जाने इस पैगाम में क्या तीर छुपे थे। भैया ने फेंके और बहनिया के दिल तराजू हो गए। हुलहुलाती छाती कूटती सफेद पहाड़ की तरह भूचाल लाती हुई बादशाही खानम उस ड्योढ़ी पर आ उतरी जहां अब तक उन्होंने कदम नहीं रखा था। लो बादशाही, तुम्हारी दुआ पूरी हो रही है। अब्बा मियां तकलीफ में भी मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखें अब भी जवान थीं। फूफी बादशाही बावजूद बालों के वही मुन्नी सी बच्चू लग रही थी जो बचपन में भाइयों से मचल मचल कर बात मनवा लिया करती थी। उनकी शेर जैसी खुर्राट आंखें एक मेमने की तरह मासूम आंखों की तरह सहमी हुई थी। बड़े बड़े आंसू उनकी संगमरमर की चट्टान जैसे गालों पर बह रहे थे। हमें कोसो बच्चू भी, अब्बा ने प्यार से कहा। मेरी अम्मा ने सिसकते हुए बादशाही खानम से कोसने की भीख मांगी। या अल्लाह या अल्लाह, उन्होंने गरजना चाहा मगर कांप कर रह गईं। या अल्लाह, मेरी उम्र मेरे भैया को देते, या मौला अपने रसूल का सदका। वह उस बच्चे की तरह झुंझला कर रो पड़ी जिसे सबक याद ना हो। सबके मुंह फक हो गए, अम्मा के पैरों का दम निकल गया। या खुदा, आज बच्चू फूफी के मुंह से भाई के लिए एक कोसना ना निकला। सिर्फ अब्बा मियां मुस्कुरा रहे थे जैसे उनके कोसने सुनकर मुस्कुरा दिया करते थे। सच है, बहन के कोसने भाई को नहीं लगते, वह माँ के दूध में डूबे हुए होते हैं।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।